पहला प्रश्न तो ये है कि आपका कि गुरु के प्रति हमारा समर्पण है या नहीं, इसका क्या मापदंड है? और ईश्वर के प्रति दृढ़ निश्चय कैसे बढ़े, ये दूसरा प्रश्न। ये तो हम सभी जानते हैं और सुन भी रखा है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तभी ईश्वर भक्ति के मार्ग में मनुष्य की सही प्रगति हो पाती है। तो समर्पण में सबसे पहले तो मनुष्य का गुरु के प्रति विश्वास चाहिए कि जो मेरा गुरु है, मान लिया हमारा गुरु महात्मा मंगतराम जी को अपना गुरु कहते हैं, तो गुरु के बारे में तो ऋषियों का एक मत है कि गुरु साक्षात परमेश्वर है, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन फॉर्म में मनुष्य रूप में जो गुरु हमको मिलता है या जिस पर हमारा निश्चय आता है, उसका नाम होता है, उसका रूप होता है। परमेश्वर का वास्तव में ना कोई नाम है ना कोई रूप है। तो कई बार मन के अंदर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि परमेश्वर ही जब गुरु है तो फिर गुरु धारण करने की जरूरत क्या है, परमेश्वर तो हमेशा ही प्राप्त है और सर्वव्यापक है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल सत्य यह है कि समय समय पर संसार में गुरु आते हैं और हम जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके मार्गदर्शन का एक ही मतलब होता है कि जीव अपने स्वरूप को, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो कैसे प्राप्त करें। तो इसीलिए गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो अटल होनी चाहिए, उसमें संशय वृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए महाजी कहते थे, पहले यदि आपने गुरु बनाना है तो उसको अच्छी तरह से ठोक बजा कर देख लो। ठोक बजाने का मतलब, जो कुछ भी आप गुरु के बारे में सुनते हो या शास्त्रों में पढ़ते हो, तो हर एंगल से ये आप पहले इसकी खोजबीन कर लो, जो गुरु हम बना रहे हैं, जिस पर अपना निश्चय ला रहे हैं, वो वास्तव में उसी श्रेणी का है जिसको हम ब्रह्म ऋषि कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। तो इसीलिए जब अच्छी तरह से मनुष्य उसको जान लेता है या उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेता है, तभी वो गुरु धारण करता है। यदि सब कुछ ठोक बजाकर उसने गुरु धारण किया है तो फिर अनिश्चय की हालत नहीं होनी चाहिए कि मेरे मन में यही आ जाए कि इससे अच्छा गुरु तो एक और भी है। चाहे बाहरी क्रियाकलाप से वो आपको उससे अच्छा लगे, क्योंकि क्रियाकलाप तो हर गुरु के अलग तरीके के होते हैं। कोई गुरु तो रामकृष्ण परमहंस जैसा होगा, जो जिसकी कई बार बातें सुनकर या शक्ल देखकर या उसे क्रियाकलाप देख के कोई ये समझेगा ये तो अपने होश में ही नहीं रहता, कई बालक जैसा व्यवहार करता है, कभी उन्मत्त जैसा व्यवहार करता है, कभी महर्षि रमण जैसा भी गुरु मिलेगा आपको। प्रकृति में सारे हैं, जिसके सामने राधा कृष्ण जैसे भारत के प्रेसिडेंट गए और आधा पौन घंटा बैठे रहे, कई क्वेश्चन पूछे, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो जहाँ एक जगह दृष्टि उनकी जमी हुई है वहीं देखते रहे, उनकी तरफ ख्याल ही नहीं उनका कोई भी। राधा कृष्ण उठ के चले गए, फिर क्या करते। और महाराज जी को देखो, जब लोग उनके पास बैठे होते थे तो कई बार वो लोग बैठे रहते थे, वो अंदर समाधि में चले जाते थे, कई बार आधा आधा घंटा हो जाता था, समाधि उनकी टूटती ही नहीं थी। उसके पश्चात जब समाधि टूटती थी, बाहर का होश आता था उनको, तब प्रेमियों से कहते थे, प्रेमी कोई विचार करो। कोई कोई शिष्य ऐसा होता था उनका कि कई बार प्रार्थना करता था, महाराज जी दिशा दे दो, मना कर देते थे। और कोई प्रेमी ऐसा होता था कि घर से बुला के उसको दिशा देते थे। तो गुरु का व्यवहार बाहरी यदि देखा जाए, गुरुओं का बड़ा ही अलग अलग तरीके का होता है। तो बाहरी क्रियाकलाप में बड़ी भिन्नता होती है, उससे गुरु की पहचान होना बड़ा मुश्किल है। फिर भी यदि आप किसी को गुरु धारण करते हैं तो हर मामले में वो पूछताछ, वो मन में शक है, शुभा है, वो क्लियर कर लेना चाहिए। गुरु तभी धारण करना चाहिए। और गुरु जब धारण कर लिया तो गुरु धारण करने का मतलब होता है कि गुरु से मैंने उसका मार्गदर्शन भी लेना है कि उस ईश्वर तक मैं कैसे पहुंचूंगा, और गुरु से मैंने वो उपासना भी सीखनी है जिस उपासना के द्वारा मैं प्रभु की याद करूंगा, जो शास्त्रों से भी मेल खाती है, क्योंकि कोई भी उपासना होगी कहीं शास्त्रों तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल अलग प्रकार की उपासना थोड़ा हो जाएगी। तो इसीलिए चाहे वो साधना का बात हो, चाहे वो संसारी मार्गदर्शन की बात हो, हर मामले में गुरु की खोजबीन करनी बहुत जरूरी है। सब कुछ पता लगाने के बाद जब मेरा निश्चय गुरु पर आता है तो फिर संशय वृत्ति आनी नहीं चाहिए, अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि मैंने गुरु की बात मानी तो मुझको मोक्ष जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और इसका मतलब यह नहीं होता कि इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, कुछ ये कई जन्म का रास्ता है, किसी को इसी जन्म में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि सबको अगले जन्म में ही मिलेगा। लेकिन जो गुरु पर विश्वास होता है उस विश्वास के आधार पर ही ये मनुष्य साधना करता है और संसार में किस प्रकार रहना है, किस प्रकार मेरा व्यवहार होना चाहिए, क्या मेरी संसार के प्रति अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, हर मामले में वो गुरु वचन की खोजबीन करता है। यदि उसके शब्द द्वारा कोई शास्त्र रचित है या वाणी प्रकट हुई है तो उसको ध्यान से पढ़ता है, मनन करता है, समझने की कोशिश करता है, और उसकी हर वो आज्ञा जो पालन करना संभव है उसके लिए वो पालन करने की कोशिश करता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी आंतरिक प्रगति ना हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को गुरु पर शक कब होता है, जो उनकी साधना करने के पश्चात भी, संयम करने के पश्चात भी आंतरिक प्रगति नहीं होती। तो यहां आके फिर उसको ये देखना पड़ता है मेरी कमी कहां खड़ी हुई है, गुरु वचन के अनुसार मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसका परहेज मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसका संयम मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसका ध्यान मैं नहीं रख रहा हूँ। तो जैसे जैसे वो आंतरिक खोज करेगा और गुरु से ही प्रार्थना करेगा, गुरुदेव मैंने तो अपनी सारी बुद्धि लगा ली फिर भी मुझको कमी का पता नहीं लग रहा है, तो यदि उसकी प्रार्थना दिल से निकली हुई है और वास्तव में वो कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर एक तलब पैदा होती है फिर, क्योंकि गुरु तो है। मां जी कहते हैं गुरु तो कहीं जाता नहीं, वो आपके अंदर ही मौजूद है। सदगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, तो वाणी गुरु गुरुवाणी तो कह रही है बड़ा स्पष्ट। तो ये तो हम नहीं मान सकते कि भाई गुरु की डेथ हो गई, शरीर तो गुरु था ही नहीं कभी भी, लेकिन आता तो शरीर रूप में ही, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस उसकी प्रेजेंस जो है वो कभी खत्म नहीं होती। चाहे हजार साल हो जाएं, यदि आप पर आपको गुरु पर पूर्ण विश्वास है और उसकी जो साधना है जिसकी परमिशन उसने दी हुई है और उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उसके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता आपकी प्रगति ना हो। और यदि कहीं आप अटक भी गए और दिल से प्रार्थना निकल रही है तो गुरु आपकी मदद ना करे। यहां तक भी होता है गुरु आपके अंदर ही बोलकर आपकी मदद कर सकता है, गुरु आपके स्वप्न में आकर भी आपका मार्गदर्शन कर सकता है, और यह भी संभव है कि गुरु साक्षात आपके सामने प्रकट होकर भी आपका मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, वो खुद ईश्वर सत्ता है, वो खुद आत्मसत्ता है। इसीलिए उसकी पावर्स अनलिमिटेड है, वो आपके मार्गदर्शन के लिए कोई भी रचना रच सकता है, और यहां तक कि आपको स्वप्न में आदेश भी दे सकता है कि भाई तुम इस व्यक्ति के पास जाओ, ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वो आपको उपयुक्त व्यक्ति के पास भेज भी सकता है जिसने उस गुरु को अच्छी तरह से समझाया है, उसके मार्गदर्शन को समझाया है और उसके अनुसार अपना जीवन बनाया है, वो उसके पास भेजने का भी आपको आदेश दे सकता है। यदि आपने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी है, आपको उसकी शक्ल भी दिखा सकता है कि ये वो व्यक्ति है जिसके पास जाओ और तुम्हारा जो है रास्ता खुल जाए। ये सब कुछ होता है, और इसके बारे में तो महाराज जी के जीवन में भी कई घटनाएं हैं, जिसमें एक तो लिखित रूप में आप सबने सुनी होगी या पढ़ी भी होगी। एक हल्द्वानी में ही प्रेमी थे, राजेंद्र प्रसाद नाम था उनका, तो वो गुरु की तलाश में थे, तो एक सोमाहरी बाबा थे वहां पर, हल्द्वानी से आगे एक जगह है अल्मोड़ा साइड में, तो उनको वो गुरु धारण करना चाहते थे, तो उन्होंने प्रार्थना की उनसे कि मुझको शरण में ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि प्रेमी अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, बस इतना ही कहा। नंदलाल जी सुना रहे थे कि उसके बाद 12 साल बीत गए उनके, और 12 साल बाद एक दिन वो लखनऊ ऑफिस टूर पे गए तो वहां स्वप्न दिखाई पड़ा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वही सुमारी बाबा प्रकट है। तो स्वप्न में उन्होंने सुमारी बाबा ने कहा इशारा करके कि ये तेरे गुरु हैं। तो खैर महाजी की शक्ल उसमें है, उन्होंने देखी, वो तो महाजी को उन्होंने देखा नहीं था। खैर अब उन्होंने बस देख लिया कि सुमारी बाबू ने जो इंडिकेशन किया था ये तेरे गुरु हैं। उसके पश्चात वो उन्होंने खुद कहा कि 12 साल फिर बीत गए। उसके पश्चात महाराज जी हल्द्वानी गए थे। तो शाम का वक्त था, सत्संग हुआ, सत्संग के पश्चात रिंग उठ गए तो वो पीछे बैठे हुए थे, तो महाराज जी ने उनको अपने पास बुलाया, इधर आओ प्रेमी। तो उन्होंने माँ जी से प्रार्थना की, माँ जी मुझे भी शरण में ले लीजिए। तो बोले प्रेमी कोई गारंटी लाओ। गारंटी का मतलब था उनका कि कोई जान पहचान का व्यक्ति हो जो तुमको जानता हो कि तुम कैसे हो, बता सके कुछ। तो उन्होंने कहा महाजी मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं है। अंदर से निराश से हो गए। तब महाजी ने कहा प्रेमी तेरे वास्ते ही ये यहां आए हैं। जब महाजी ने ये बात कही तब उनको ध्यान आया कि अरे 12 साल पहले सपने में मैंने इन्हीं को तो देखा था। और अगले दिन सुबह उनकी दीक्षा हो गई। तो देखिए कि ईश्वर क्या लीला रचता है कि आपके अंदर यदि ईश्वर मार्ग पे चलने की तड़प है तो अंतर्यामी ईश्वर ही तो गुरु है ना, कोई अलग सत्ता तो नहीं गुरु। तो सारी रचना उसी ने रचनी है। तो इसलिए जब पूर्ण गुरु पर आपको विश्वास आ गया तो आपको दो ही चीजें चाहिए, संसार में कैसे चलूं उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए और साधना क्या करूं वो पद्धति चाहिए आपको। तो ये दोनों चीजें जहां आपको मिल जाए बात खत्म हो गई। तो जैसे जैसे आप मेहनत करोगे वैसे वैसे ईश्वर कृपा या गुरु कृपा आपका हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में जो पहली आवश्यकता है वो गुरु भक्ति की है। तो इसीलिए शुरू शुरू में आप क्या करते हो कि जैसे महाराज जी ने 5 नियम दिए, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्संग और पूरी गाइडेंस भी दी समतावलास में उसकी, कि कितना आपने वक्त साधना में लगाना है सन्नी, और कैसे आपने व्यवहार करना है, कैसे कमाई करनी है, कितना दान करना है, हर तरीके का मार्गदर्शन वहाँ उपलब्ध है। शास्त्र का स्वाध्याय करना है, व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले जो विकार तुमको नजर आ रहे हैं कि ये तो गलती है, आप खुद जानते हो कि ये गलत है, जो जानते हो गलत है उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। आप सबसे पहले तो जीवन की सफाई करनी है, उसके पश्चात हर प्रकार का त्याग करना है और शास्त्रों का भी बारीकी से अध्ययन करना है। बारीकी से इसलिए क्योंकि उसमें बड़ी गहराई होती है, जो कुछ भी आज आप समझ रहे हो वास्तविकता वैसी नहीं होती, उसकी परतें बाद में मनन करते करते जीवन सतमार्ग में व्यतीत करते करते उसकी परतें खुलती हैं, फिर विचारों में गहराई जाती है, उसकी वास्तविकता समझ में आती है। इसलिए ये निरंतर प्रक्रिया है। तो शुरू शुरू में आप हर मामले में गुरु आज्ञा देखने की कोशिश करते हो। तो आपके मन में ये भाव होता है कि देखो मैं गुरु आज्ञा पालन कर रहा हूँ। माँ जी ने कहा है कि ईमानदारी से कमाई करनी है, उसमें से 10% उन्हें दान करना है, उसको अपने इस्तेमाल में लेना, हानि के देने वाला है। तो तू इतना अलर्ट रहता है कि मैंने बेईमानी से पैसा कमाना ही नहीं है, चाहे सारा संसार बेईमानी करके पैसा कमा रहा हो, मैंने नहीं कमाना, और उसमें से 10% मैंने दीन दुखियों की सेवा के लिए भी निकालना है, निष्काम सेवा के लिए भी निकालना है, बाकी में ही मैंने गुजारा करना सीखना है। तो क्या होता है, जैसे से आप गुरु आज्ञा का पालन करते हो तो आपके अंदर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। तो गुरु की याद आपको निरंतर जब बनी रहती है तो गुरु का असली रूप जो अंदर है वो आपको याद नहीं आता है, आपको उसका नाम रूप ही याद आता है। उसका जो मनुष्य रूप है उसी से आपका संबंध गहरा होता है। तो जब आप कुछ से कोई काम नहीं हो पाएगा या कोई गलती हो गई तो क्षमा भी आप गुरु से मांगोगे, गुरुदेव गलती हो गई, अंदर पश्चाताप भी होगा तब भी आपको गुरु की ही याद आएगी, और जब सिमरन करोगे तब ईश्वर की याद आएगी आपको। ईश्वर का नाम रूप आप नहीं जानते, इसलिए जो मंत्र उसने आपके लिए प्रकट किया है वो मंत्र ही आप ईश्वर समझ के जब साधना करते हो तो आपको ईश्वर की याद आती है। तो इसीलिए करनी में आपकी गुरु भक्ति गहरी होती चली जाती है, गुरु आज्ञा का पालन जैसे जैसे करते हो वैसे गुरु भक्ति गहरी होती चली जाती है। तो इस गुरु भक्ति से जो गुजरता है उसके अंदर फिर वो गुरु कृपा अवतरित होने लगती है। तो वही अंदर का जो मार्ग है वो जो गुरु कृपा है वही आगे का मार्ग प्रशस्त करती है, वो आगे आपकी प्रगति करती है। तो सारी ये प्रक्रिया जब आदमी अपनाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति ना हो। मन में संशय तो अक्सर लोगों के आ जाते हैं, उसके भी कहीं ना कहीं आएंगे, लेकिन गुरु भक्ति जो दृढ़ता है वो हर संशय को उड़ा देती है। और यदि कहीं संशय आ भी गया, कहीं अटक भी गया, तो उसके अंदर बड़ी तीव्र व्यथा होती है और उस व्यथा को लेकर वो गुरु से ही प्रार्थना करता है, और किसी दरवाजे पे नहीं खटखटाता, चाहे कुछ भी हो जाए वो गुरु से ही प्रार्थना करेगा, गुरुदेव मेरा यह संशय निवारण आप ही कर सकते हो। तो ये वो समर्पण है जो आपके अंदर गुरु भक्ति गहरी करता है, और जब गुरु प्रदत्त साधना को आप अपनाते हो नियम पूर्वक तो फिर आपके अंदर के अनुभव भी होने लगते हैं, वो आपके पूर्वजन्म के संस्कारों पर भी निर्भर कर सकता है कि पूर्वजन्म में कितनी यात्रा करके आए हो आप, और वर्तमान जन्म पर भी निर्भर कर सकता है कि वर्तमान जन्म में आप कितनी मेहनत कर रहे हो और कितनी तलब के साथ कितनी लगन के साथ आप ईश्वर भक्ति कर रहे हो। लेकिन यदि आपके अंदर गुरु के प्रति संशय भक्ति होती है और अन्य किसी गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ने लगती है तो फिर वहां गुरु प्रेम में अंतर आ जाता है, डिवोशन में अंतर आ जाता है। तो इसीलिए पूर्ण समर्पण का गुरु के प्रति मतलब ही यही है कि एक बार जब आपने गुरु बनाया है तो बीच में मौत भी आ जाए लेकिन गुरु के प्रति अनिश्चय की हालत आपके मन में पैदा नहीं होनी चाहिए, किसी हालत से नहीं होनी चाहिए। और कभी ऐसा मौका आ भी जाए कि आपको एक पूर्ण ऋषि का पता लग जाए जो वास्तव में गुरु है, ऐसा होता है ना, जैसे महाजी थे नॉर्थ में तो दक्षिण में महर्षि रमण थे, पीरियड दोनों का एक ही था, महर्षि रमण ने सन 50 में शरीर छोड़ा था, महावीर ने सन 54 में शरीर छोड़ा, तो हो सकता है कि दूसरे गुरु का पता लग गया आपको, उसकी बातें भी आपको ठीक लगती हैं, पर आपके अंदर संशय बैठा हुआ है या साधना में कोई रुकावट है, आपके मन में यह आया कि अब इस गुरु से मदद लेता हूं, तो आपके अंदर इतना अटल समर्पण होना चाहिए कि यदि मुझको जरूरत है किसी मार्गदर्शन की, तो मैं अपने गुरु से ही प्रार्थना करूंगा। जहां पहुंचाना है वही मुझे पहुंचाएगा, जिसके पास जाना है वही मुझको आदेश देगा। तो आपका अंदर से पूर्ण समर्पण होता है, आप उसी से प्रार्थना करते हो, गुरुदेव ये मेरी रुकावट है, अभी मेरे मन में ऐसा रहा है कि आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो यदि उसको मार्गदर्शन की जरूरत है, वो मार्गदर्शन करेगा आपका। तो इसीलिए वो समर्पण जो है हर एंगल से पूर्ण ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ने आदेश दे रखा कि अन्य किसी ऋषि का तुम साहित्य मत पढ़ना या उसका सत्संग श्रवण मत करना या उसकी बातों पर अविश्वास करना। तो सारे शास्त्र हैं, जैसे गीता है, महर्षि रमण से बातचीत है, रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत हैं, आप हर जगह से सीख सकते हो, सीखने की मनाही नहीं है, लेकिन गुरु रूप में समर्पण एक ही जगह होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी साधना में भी रुकावट आ सकती है। साधना में भी ये हो सकता है कि आपको 20 वर्ष लग गए साधना करते करते, वो आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी कोई साधना में प्रगति हुई है, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ अंदर से, मैं तो सिमरन ही सिमरन करे जा रहा हूं। हो सकता है क्योंकि आपको पूर्व जन्म का तो पता नहीं, तो संशय वृत्ति आपके अंदर आ सकती है, और दूसरी साधना सुन ली, अरे वो गुरु कहता है ये तो सीधा मार्ग है, ये तो बड़ी जल्दी इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, तो आपके अंदर संशय आता है, अरे मैं उस गुरु के पास चले जाऊं उससे तो बड़ी जल्दी सफलता मिलेगी, कई लोगों को मिल चुकी है। तो ये जो संशय वृत्ति है, ये आपका फिर आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ती। इसीलिए एक बार जब आपने पूर्ण गुरु की साधना शुरू की है, तो बीच में चाहे जान भी चली जाए, लेकिन तूने अपनी साधना नहीं बदलनी, लेकिन गुरु पूर्ण होना चाहिए, उसकी खोजबीन जरूर करनी चाहिए। और बाय चांस ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग भी तो पूर्ण नहीं ना, खोजबीन पूरी तरह से कई बार नहीं करते, कोई नकली गुरु ही धारण कर लिया जीवन में जो पूर्ण नहीं है, या बड़ा अच्छा त्यागी कोई महापुरुष है लेकिन पूर्ण ऋषि नहीं है वो, तो उससे उसकी साधना मैंने धारण कर ली, बाद में पता लगा कि पूर्ण गुरु क्या होता है, ये पूर्ण ऋषि तो नहीं है, तो फिर आप साधना भी बदल सकते हो, गुरु भी बदल सकते हो, लेकिन खोज आपकी पूर्ण होनी चाहिए, बस बात यह है। यदि जैसे महाजी है, मान लिया तो महाजी के प्रमाण है, उनका जीवन प्रमाण है, उनकी वाणी प्रमाण है, संतरदास शास्त्र उनका प्रमाण है, और खुला जीवन उनका संसार में रहा है, वो सब जो सारा उनके जीवन का इतिहास है, जो उनका प्रैक्टिकल जीवन रहा है, ये सारे प्रमाण है, तो उनका प्रमाणित जीवन है। ऐसी रामकृष्ण परमहंस का एक प्रमाणित जीवन है, विवेकानंद जैसा व्यक्ति उनका शिष्य रहा है, तो गुरु में खोट कहाँ हो सकता है। तो प्रमाणित गुरु जो है वो तो हिस्ट्री ही बता देती है, और जो नकली गुरु हैं उनकी हिस्ट्री भी बता देती है, उनकी कहीं ना कहीं पोल जरूर खुलती है। तो इसीलिए हम लोगों के बीच में जो गुरु आए हैं महाराज जी के रूप में, तो हमें पता है कि हमें महाराज जी को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो शास्त्र वो वाणी अपने आप में एक प्रमाण है, और उनकी साधना पद्धति भी संत पुराण ग्रंथ में ही जो प्रमाणित ग्रंथ है उसमें ही लिखी हुई कि महामंत्र जो है ये सर्वशक्ति दाता है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्वसिद्धि दाता है, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाय अपार, कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत्व योग, मंगल तत् अक्षर नित गाइए प्रभु दर्शन हो से आओ। वो ज्ञान स्थिति प्रभु दर्शन की गारंटी वाणी दे रही है। तो हम मनुष्य की बात पे विश्वास करें या लिखित बात पे विश्वास करें, लोग तो तर्क करते ना। इसीलिए चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो लेकिन मैंने शास्त्र प्रमाण को देखना है। और जो महाराज जी ने राजयोग का मंत्र दिया है उसके बारे में साफ महाराज ने कहा, राजयोग की साधना करनी है, श्वास के साथ जप करना है, तो उसमें गुरु से दीक्षा मिलना लाजमी है। गुरु जब खुद उसको उस साधना में डालता है तभी उस मार्ग पर चलने का वो अधिकारी होता है, वो साधना करने का अधिकारी होता है। इसमें मनमानी नहीं चल सकती। इसीलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा, लोग तो बहका देंगे आपको। यदि कभी किसी ने बहका भी दिया तो उसके बाद में आपने देखा पढ़कर मैं तो गलती कर गया, गलती दुरुस्त कर लो। जैसे कि मैंने भी अपने जीवन में गलती की, मुझको पहले नाम मिला भगत जी ने ही मुझको नाम दिया, हमारे पिताजी के कहने पर, जो श्वास के साथ जपा जाता था, जो नाम महाराज जी ने भगत जी को दिया था वही उन्होंने मुझे बताया। 16 वर्ष में जपता रहा उसको, यहाँ तपोभूमि में आके भी 6-6 घंटे में उसको जपता था, लेकिन जब मुझको पता लगा, जब पढ़ाई लिखाई की मैंने, तो पता लगा ये मामला तो गड़बड़ है, महाराज जी तो परमिशन ही नहीं। उसके बाद जब 81 में मेरे गुरुदेव किताब छपी उसमें महामन का एक चैप्टर था, उसको पढ़ा तब पता लगा कि महाराज जी ने तो महामंत्र सबके लिए खुला दीक्षा के रूप में दिया हुआ है, और उसकी वाणी भी पढ़ी तो वाणी में सब लिखा हुआ था। तो वाणी भी पढ़ी तो उसमें तो बड़ा स्पष्ट था कि ये तो सर्वसिद्धि दाता है और ईश्वर प्राप्ति की ये लिखित गारंटी दे रहा है। मन के सारे कलह क्लेश का मतलब भी है कि मन के संकल्प को खत्म करने की शक्ति है इसमें, क्योंकि मन का संकल्प जब खत्म होता है अंदर ईश्वर प्राप्ति तभी होती है। वो भी लिखा हुआ है पाए ज्ञान तत्व, ज्ञान तत्व तो आत्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं, उससे योग होगा और क्या चाहिए। तो फिर साधना बदली, 16 वर्ष बाद महामंत्र का जाप शुरू किया। तो जो प्रगति 16 वर्ष में नहीं हुई वो फिर महामंत्र के जाप से अंदर की प्रगति हुई। अब मैं नहीं कह सकता कि भाई किसी की कितने दिन में प्रगति शुरू होगी, मैं नहीं कह सकता उसको, क्योंकि जो कुछ भी साधना की उससे प्योरिफिकेशन तो हुआ ही, भाई ईश्वर की ही तो याद करी। लेकिन गुरु प्रदत्त साधना का करना लाजमी है। जब पता लग जाए आपको, धोखे में जब तक कर रहा हो कर रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन जब पता लग जाए आपको, आप खोजी व्यक्ति हो, सही बात का पता लग जाए, तब भी आप पुराना ही राग अलापते रहो, ये फिर आपकी गलती है। इसीलिए गुरु की बात का जब भी आपको सही पता लग जाए या जब आप सीख लो तो फिर आपने गलती नहीं करनी, गुरु की बात के अनुसार ही आपने चलना है। यदि आप इस प्रकार से अपना दैनिक जीवन, अपना सांसारिक जीवन भी गुरु मार्गदर्शन के अनुसार चला रहे हो और साधना भी गुरु के मार्गदर्शन अनुसार कर रहे हो तो फिर इसका मतलब है आपका गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, आपकी प्रगति जरूर होगी, लेकिन किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। इतना आगे निकल गया, मैं अभी मुझको लग रहा है जैसे मैं वहीं का वहीं पड़ा हुआ हूं, मेरा तो मन भी अभी संसार से नहीं हटता, मंत्र में जो है वो लगातार लगा नहीं रहता, वो बार बार टूटता है, इस तरह के संशय नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अपने समझदार साथी भी बनाना चाहिए जो उसी मार्ग पर लगे हुए, तो उनसे आपको जो है सहारा मिलता है, उनके अनुभव से आप सीखते हो। और फिर भी यदि आपका समर्पण पूर्ण है तो कोई भी संशय है तो गुरु उस संशय निवृत्ति की व्यवस्था आपके लिए जरूर करेगा, ये पक्की बात है। तो समर्पण पूर्ण होना चाहिए, किसी हालत से भी उस समर्पण से विचलित नहीं होना चाहिए। जब विचलित नहीं होगे तो याद रखो आप प्रार्थना कर रहे हो गुरु से, फिर भी आपको गुरु की मदद नहीं मिल रही है या नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आपके अंदर तड़प बढ़ेगी। और वो तड़प याद रखिए वो अपने आप में गहरी साधना है, वो तड़प अपने आप में गहरी साधना है, वो आपको गुरु कृपा का अधिकारी बनाती है। इसलिए कितनी भी बेचैनी हो गुरु को ही याद करो, अन्य कोई आसरा मत ढूंढो, मदद आपको जरूर मिलेगी और आपके आध्यात्मिक प्रगति भी जरूर होगी। लेकिन मार्ग क्योंकि लंबा है इसलिए उतावलापन नहीं होना चाहिए कि खटाखट हो जाए। और दूसरी बात, जहां तक ईश्वर निश्चय की बात है, ईश्वर निश्चय की दृढ़ता कैसे हो, तो ईश्वर निश्चय की दृढ़ता सबसे ज्यादा जो है वो शास्त्र स्वाध्याय से होती है। जैसे जैसे हम शास्त्र का स्वाध्याय मनन करते हैं वैसे वैसे सारे संसार का भेद, साधना का भेद, गुरु का भेद, कैसे चलना चाहिए उसका भेद सब खुलने लगते हैं और इनकी बारीकी समझ में आने लगती है। और सत्संग भी शास्त्र को समझने में ही सहायता करता है, यदि सही सत्संग हम श्रवण कर रहे हैं तो। इस सत्संग का मतलब ये होता है जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको सरल करके समझा देना, इसको प्रमाण के द्वारा उदाहरण के द्वारा समझा देना। और दूसरी बात, हमारे अंदर जैसे गुरु भक्ति है उसी तरह ईश्वर परायणता भी होनी चाहिए। तो ईश्वर परायणता का मतलब ये होता है कि संसार में जो भी घटनाक्रम घट रहा है वो ईश्वर के नियम के अनुसार घट रहा है। जैसे कि आजकल का युग है, बड़ी उथल पुथल है, बड़ी चालाकियां हैं, बड़ी मकारियां हैं, बड़ी हिंसा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर इस सृष्टि से गायब हो गया है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं। लेकिन यदि हमने शास्त्र पढ़ा है गहराई से तो वहां तो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, ये प्रकृति पूरी की पूरी ईश्वर की प्रकृति बनाई हुई प्रकृति है और ये तीन गुणों से युक्त है। संपूर्ण प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है और इन गुणों में निरंतर आपस में परिवर्तन हो रहा है। तमोगुण जो है वो रजोगुण में बदल रहा है, रजोगुण सतोगुण में बदल रहा है, सतोगुण रजोगुण में बदल रहा है, रजोगुण तमोगुण में बदल रहा है, ये निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो अब बताइए, निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए तो प्रकृति दुख रूप है। मुझे एक हर व्यक्ति को एक निश्चित हालात चाहिए संसार में, ऐसा होना चाहिए, जैसा इसका स्वभाव है वैसे ही चाहता है, लेकिन प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए प्रकृति जो है वो मनुष्य के लिए दुख रूप है, द्वंद्व रूप है। महाराज कह रहे हैं सुख से दुख उत्पन्न हो रहा है, दुख से सुख उत्पन्न हो रहा है, निरंतर ये द्वंद्व का मतलब होता है एक से दूसरे का निर्माण हो रहा है। जैसे उजाला है, उजाला कम हो जाए तो अंधेरा हो जाता है, तो उजाले से ही तो अंधेरे का निर्माण हो रहा है। तो ये द्वंद्व रूप प्रकृति है, ये सारी की सारी अल्टीमेटली जीव के लिए है दुखदाई ही, इसमें चैन नहीं हो सकता जीव के लिए। तो जब वो इस सारे भेद को समझता है, तब उसके अंदर एक ही चीज आती है कि भाई फिर प्रकृति से ऊपर क्या वस्तु है। पता होता है प्रकृति का मालिक ईश्वर है, तो इसका मतलब हो गया कि ईश्वर को जाने बिना या ईश्वर की ओर चले बिना मनुष्य को किसी भी हालत से कुछ भी क्यों ना कर ले, वो इस सृष्टि में, इस प्रकृति में या इस संसार में उसको चैन मिल ही नहीं सकता किसी भी हालत से। ये शास्त्र का एनालिसिस करते करते आपको समझ आ जाएगी बात। तो इसीलिए जब मैं मान लिया एक संत अभिलाष का ही अध्ययन करूं बारीकी से, तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। हर चीज महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट कर रखी है, लेकिन गहराई से पढ़ना पड़ता है, वर्षों लगते हैं इसको समझने में। एक बार की रीडिंग समझ नहीं आती, साधना करते हो, उधर अपना अपने मन को पवित्र करते हो, अपने कर्म को करने को पवित्र करते हो, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, जिसको महाराज कहते हैं बुद्धि बल बढ़ता है, बुद्धि की बारीकी बढ़ती है, धीरे धीरे बुद्धि के अंदर विवेक गहरा होता है, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगती है। तब आपको पता लगता है इस प्रकृति में जब तक मैं हूं तब तक चैन है ही नहीं। तो इसीलिए तब आपको समझ आता है कि सतोगुण भी बंधन रूप है, सतोगुण भी बंधन रूप है, मैंने सतोगुण से भी मुक्त होना है, क्योंकि सतोगुण भी प्रकृति के अंदर है ना। यदि आज मैं सतोगुणी हूं, कल को मैं रजोगुणी भी हो सकता हूं, जरा मेरे अंदर अलर्टनेस कम हुई, जरा लापरवाही की, मैं रजोगुण में आ जाऊं, परमानेंट चीज नहीं है। तो इसलिए निरंतर प्रगति चाहिए, निरंतर। तो ये साधना के द्वारा आप अंदर की प्रगति करते हो, और निष्काम कर्म के द्वारा आप वासना के बंधन को कमजोर करते हो, अपने कर्तापन के या अपने अहंकार को धीरे धीरे कमजोर करते हो। तो जैसे जैसे आपका शास्त्र का अध्ययन गहराई से होता है, जैसे जैसे सत्संग का श्रवण गहराई से होता है, उस पर मनन करने की प्रक्रिया भी गहरी होती है, वैसे वैसे आपके अंदर ईश्वर निश्चय दृढ़ होता जाता है। आपकी ये हालत हो जाती है कि बड़े से बड़ा घटनाक्रम घटने के बाद भी, मान लिया मैं बड़ा दानी पुरुष हूं, किसी व्यक्ति को मैं कभी कष्ट देता ही नहीं, दूसरे का कष्ट बर्दाश्त करता हूं और दूसरे को सुख देने के लिए खुद कष्ट भोग लेता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसी घटना घट जाती है कि मेरे घर में ही आग लग जाती है, मेरे घर में डकैती पड़ जाती है, या कोई मुझको बड़ी गालियां दे देता है, मेरे साथ मारपीट कर देता है, उसको होश रहती है, ये प्रभु की करनी है मेरे साथ, ये सब प्रभु ने मेरे घर में आग लगाई है, उसका दृढ़ निश्चय होता है, ये मेरा पिछला कर्म है, ये मेरा प्रारब्ध है, और सारी सृष्टि को प्रभु, सारे मनुष्यों को प्रभु, सारे जीवों को प्रभु जो है वो प्रारब्ध के अनुसार इस प्रकृति में घुमा रहे हैं। तो यहां एक घटना भी बिना ईश्वर के हुक्म के घट ही नहीं सकती, क्योंकि वाणी प्रमाण है इसका। वाणी कह रही है कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। मैं तो वाणी के विरुद्ध सोच रहा कि मैंने बड़े पुण्य कर्म किए हैं, मुझे याद ही नहीं मैंने कोई पाप किया, फिर भी मेरे घर में आग लग गई, फिर भी लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई कर दी, फिर भी मेरे घर में लोगों ने लूटपाट कर दी। उसको याद आता है कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। तूने क्या करना, अकर्ता होना है। तू अकर्ता कैसे हो सकता है, तू तो देह धारण किए हुए और देह से निरंतर कर्म होते रहते हैं, और देह प्रारब्ध के अधीन है, तो कर्म तो कभी रुकेंगे नहीं। महर्षि रमन कहते थे कि कोशिश करके देख लो एक जगह बैठ के, तो बैठ ही नहीं पाओगे, मन तुमको उठा के ले जाएगा, क्योंकि देह प्रारब्ध के अधीन है। देह से जो कर्म है वो परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, आपको वो कर्म करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। लेकिन यदि तेरे अंदर विवेक कायम है, तूने शास्त्रों को बारीकी से पढ़ा है, तुझे गुरु वचन या ईश्वर वचन याद है, तो तू उससे तुलना करेगा कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। आप अकर्ता हो रहो, यही सार है क्या, तूने अकर्ता होना है। तो देह के कर्म को तू नहीं रोक सकता, फिर भी तू अकर्ता बन सकता है, कैसे बनेगा। तो ये अकर्ता भाव व्यक्ति का अंतर साधना में खत्म होता है, और बाहर कर्म जो है वो निष्काम रूप में करने की कोशिश करता है। निष्काम कर्म क्या होता है कि वो परोपकारी कर्म करता है, बढ़ाता है अपने धीरे धीरे परोपकारी जीवन में, उस कर्म का जो फल होता है वो ईश्वर हुक्म में देखता है। जो कर्म हो गया उस कर्म को भी वो प्रभु को ही करता समझता है कि प्रभु इस देह के प्रारब्ध में था ये, तभी ये कर्म हो पाया, इसलिए करता तो तुम हो, मुझको तो पता ही नहीं। उधर तो परोपकारी कर्म कर रहा है, तो वासना से प्रेरित कर्म नहीं है उसका, वासना है भी तो सतोगुणी वासना है, लेकिन कर्म का जो फल है उसका अहंकार वो नहीं पाल रहा है, उसके अंदर समर्पण भाव है, ये ईश्वर प्रायता है कि उसको करता ईश्वर को समझना, और कर्म फल में खुद निर्लेप रहना कि जो हुआ प्रभु आपके हुक्म से हुआ, चाहे उसका फल मुझे निगेटिव मिला चाहे पॉजिटिव मिला, और जो कर्म बन भी पाया वो भी उसका कारण करता प्रभु ही। तो हर मामले में वो प्रभु को समर्पण कर देता है, इस तरह से उसके मन में उसका मैल, उसके संस्कार गहरे नहीं बन पाते, उसका संबंध उससे नहीं बन पाता। इस प्रकार से ये ईश्वर प्रायणता उसके अंदर धीरे धीरे गहरी होती जाती है। जैसे जैसे ईश्वर प्रायणता गहरी होगी, ईश्वर निश्चय आपके अंदर दृढ़ होता रहेगा। तो ईश्वर निश्चय केवल कहने मात्र से दृढ़ नहीं होता, केवल किताबें पढ़ने मात्र से दृढ़ नहीं होता, ये सारा प्रोग्राम जो है ईश्वर निश्चय को दृढ़ करता है। इसलिए जैसे जैसे आप सत्मार्ग पर चलोगे आपके अंदर ईश्वर निश्चय बढ़ेगा, और ये जितनी आपके अंदर गुरु भक्ति होगी उतना ही इसका जो इफेक्ट है वो ईश्वर निश्चय में ही पड़ता है, गहरा होता जाता है। तो बाद में फिर आप के अंदर जब वो ईश्वर भक्ति प्रकट होती है, तो फिर आपको उस समय हर समय एहसास होता है कि गुरु ईश्वर कोई दो चीज़ें नहीं है, वो एक ही है। तो अंदर आप गुरु का संग करते हो, अंदर आप ईश्वर का संग करते हो, वो दो चीज़ें नहीं एक ही है, उसको चाहे प्रभु कह लो चाहे आप गुरु कह लो। लेकिन ये स्थिति बाद में आती है, शुरू शुरू में गुरु भक्ति होती है, गुरु की बातें याद आती हैं, गुरु का मार्गदर्शन याद आता है, उसके अनुसार जब मेरा जीवन निश्चित हो जाता है तब अंदर प्रभु भक्ति हिलोरे मारती है, और फिर जाकर ईश्वर प्रायणता और गुरु प्रायणता या गुरु के प्रति समर्पण में पूरा होता है। ओम ब्रह्म।